ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸವ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ. ತೋ ಲಿಖ ಲೇ ಸಭಿ ಲೋಕ ಔರ್ ಬಾಕಿ ಹೈ. तो हम लोग पांचवें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे थे. अभी इस छठे अध्याय में भगवान अष्टांग योग का वर्णन करेंगे. हम लोग पांचवें अध्याय के 27 और 28वां श्लोक में संक्षेप में भगवान इस अष्टांग योग को वर्णन करते हैं कि कैसे अष्टांग योग के द्वारा भी एक व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है. तो यहाँ पर फिर से भगवान उसको विस्तार में चर्चा करेंगे. इस अध्याय में प्रभुपाद इसके बारे में लिखते हैं, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है. यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है. इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के लिए पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता. पूर्णतः की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों को भोग करने के उद्देश्य से नहीं. कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश है. शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं, शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए अपितु पूरे शरीर के तुष्टि के लिए कार्य करते हैं. इसी प्रकार जो जीव अपने तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी. यहाँ तक जैसे तो प्रभुपाद जी, यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्थिति की यहाँ से इस अध्याय में भगवान बताते हैं वहाँ से लेकर, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना ही इससे श्रेष्ठ है. वहाँ तक इस अध्याय के बारे में बोल रहे हैं और आगे भी हम लोगों ने उसको चर्चा किया. 47वां श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद ये पूरा वो हम लोगों ने पढ़ा था उसको, जब हम लोग बुद्धि योग को चर्चा कर रहे थे. ये पूरा 6 अध्याय उनका वहां पर सार में बताते. और इस अध्याय में ये सभी पहले दो श्लोक में वास्तविक सन्यास क्या है उसका वर्णन करते हैं, या सन्यास और योग दोनों एक ही है ऐसे भगवान वर्णन करते हैं. और तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक योग की सीढ़ी का वर्णन करते. उस दिन हमने चित्र बनाया था ना, जब बुद्धि योग का चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो उस सीढ़ी को यहाँ पर भगवान वर्णन करते हैं. तो सीढ़ी के आरंभिक अवस्था को योगारूढ़ कहते हैं, योगारूढ़ कहते हैं, योगारूढ़. और सीढ़ी के अंतिम स्तर को योगारूढ़ कहते हैं. और उसके बाद में वो योगारूढ़ में स्थित व्यक्ति का भी लक्षण इसमें बताते हैं. फिर उसके बाद में अष्टांग योग का वर्णन करते हैं. दस से पंद्रह 17वें श्लोक तक, बट लेके क्योंकि इस वो 16वें और 17वें श्लोक वो सिर्फ अष्टांग योग के लिए नहीं, सबके लिए है, वो लागू होता है। नियमित जीवन बिताना है तो योगी कैसे नहीं बन सकते हैं, कि ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं करना चाहिए, कम भी सोना नहीं चाहिए, और हमारा निद्रा आहार विहार में हमें कैसे नियमित होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पर। और योगाभ्यास की उच्चतर अवस्था वहाँ पर समाधि का वर्णन है। समाधि ध्यान धारणा ध्यान समाधि का वर्णन होता है उससे। योगाभ्यास की उच्चतर व्हाट आई हैड रिटन एडवांस स्टेजेस ऑफ योगा, योग के ऊंचे स्तर वो होना अच्छा है, बदल लीजिए इसको, योग के ऊंचे अष्टांग योग के ऊंचे स्तर या योग के ऊंचे स्तर है ना, थोड़ा उसको बदल दीजिए। एनी बेटर वर्डिंग इफ यू हैव यू कैन पुट। और उसके बाद में भगवान कैसे मन को नियंत्रण करना कर सकते हैं इसके बारे में उपदेश देते हैं, क्योंकि पहले भी आता है इस अष्टांग योग के वर्ण उस योग के सीढ़ी में भी आता है, वहाँ पर विशेष करके क्यों मन को नियंत्रण करना चाहिए, नेसेसिटी ऑफ कंट्रोलिंग माइंड वो वर्णन करते हैं। और यहाँ पर पांचवें विभाग में छठे विभाग में उसको कैसे नियंत्रण किया जाता है उसको वर्णन करते हैं। तो जरूरत क्या है कि मन को नियंत्रण करना, क्योंकि जब तक हम लोग मन को नियंत्रण नहीं करते हैं इंद्रिया क्या है, इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं, और कोई भी योग पद्धति में मन को और इंद्रियों को नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अब तक जो भी चर्चा किया है वो सब क्या है, कैसे इंद्र तृप्ति के फल की आसक्ति या इंद्र तृप्ति की आसक्ति है उससे मुक्त होना चाहिए, अपने आप को दिव्य ज्ञान में या भगवान के संबंध में कार्य करना चाहिए। तो और उसके बाद में वो जब मन को नियंत्रण कर लेता है उस योगी का क्या लक्षण है, पूर्ण योगी का, तो वो वर्णन आता है। फिर उसके बाद में फिर भी अर्जुन ये सब बताने के बाद भी अर्जुन कहते हैं कि मन को नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। तो उसको नियंत्रण उसके लिए और उपदेश देते हैं भगवान कैसे मन को नियंत्रण किया जा सकता है। अभ्यास ये न तो कौंतेय वैराग्य न चाहते। और इसके बाद में अर्जुन फिर से प्रश्न पूछते हैं कि इस योगाभ्यास में हम लोग असफल हो गए तो क्या होगा, इसके बारे में भगवान इसके लिए दो उत्तर देते हैं। एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं इस जिसका पतन आरंभ में ही हो जाता है, थोड़ा ही प्रगति करने के बाद हो जाता है, तो उसका गंतव्य क्या हो जाता है, उसका गति क्या हो जाता है, उसका वर्णन करते हैं। और एक व्यक्ति जो लंबे समय अभ्यास करके जब उसका पतन हो जाता है या उसका मृत्यु हो जाता है, वो योग को आगे नहीं, योग का अभ्यास जो है वो आगे नहीं बढ़ाता है, उस व्यक्ति के बारे में भी भगवान इसमें वर्णन करते हैं। तो और अंतिम जो दो श्लोक जो है वो क्या करते हैं, ये सभी जो 6 अध्यायों का सार वहाँ पर प्रस्तुत किया गया। सर्वोच्च योगी कौन है, टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। इन फैक्ट वी शुड राइट इंस्टेड ऑफ टॉप मोस्ट प्रॉपर लाइक दैट ऑल्सो बेटर टू राइट सर्वोच्च योगी आई थिंक, है ना। सर्वोच्च योगी कौन है उसके बारे में भगवान वर्णन करते हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गणतेनांतरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त मतः। सो अंतिम जो भक्ति योग तो टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, यू कैन राइट मे बी, और सर्वोच्च योगी कौन है, और या सर्वोच्च योगी का वर्णन, सर्वोच्च योगी का वर्णन, उसके साथ साथ सर्वोच्च योग पद्धति के साथ साथ सर्वोच्च योगी या सर्वोच्च योगी का वर्णन ऐसे लिखिए। हरे कृष्ण ओके यू कैन इंक्रीज टू मच नॉइस ऑफ ऑटोमोबाइल्स। हरे कृष्ण। तो पहला श्लोक श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या स संन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चक्रियः। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म कल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है, ऐसे कहते हैं। कितने बार हम लोगों ने इसको सुना ना अभी न निराश्रित अनाश्रित न निराश्रय निर्ममा, कर्म फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, हम लोग कितनी बार इसको सुना रहे हैं भाई अब तक। तो उसको ये सन्यासी कहते हैं, वास्तविक सन्यासी वही योगी भी है। योगी का अर्थ भी वही है क्योंकि योग मतलब इंद्र तृप्त से हमें दूर रहना चाहिए। तो सन्यासी भी क्या है, इंद्र तृप्त से दूर रहना चाहिए, कर्म फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। वह नहीं जो तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। यहां पर कर्म सन्यास को खंडन किया जा रहा है। तो जो कर्म सन्यासी होते हैं, मायावादी होते हैं, जिनके बारे में विस्तार से वर्णन हुआ ना पिछले अध्याय में भी, तो प्रभुपाद जी वो वैष्णव सन्यासी और ऐसे मायावादी कर्म सन्यासी के बीच में अंतर जो है उसका वर्णन करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, यज्ञ करना बंद कर देते हैं, जो गृहस्थों के लिए विशेष करके या वर्णाश्रम धर्म को पालन करने वालों को ये करना जरूरी होता है। तो वो लोग सन्यासी च योगी च न निराग्रे न च क्रिया, और कर्म भी त्याग देते हैं वो, इसको ले उनको कर्म सन्यासी कहते हैं। तो शंकराचार्य के अनुयायी वगैरह, तो पहले सन्यास लेना है और फिर उनके पास आना, तो तभी उनका आध्यात्मिक जीवन आरंभ होता है। तो ऐसे उनको खंडन करते हैं। लेकिन हाँ, और पहले लाइन में वो कर्मवादियों का खंडन कर रहे हैं जो कर्म फल से बहुत आसक्त रहते हैं। तो दोनों को यहाँ पर खंडन किया जा रहा है। और वास्तविक सन्यासी कौन है? जो सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं, जो भी भौतिक इच्छा नहीं करते हैं और भगवान के भक्ति सेवा में लग जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वो क्या कर रहे हैं, वो ये श्लोक उल्लेख कर रहे हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मणि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे दुखी। तो ये असली सन्यासी कि कोई धन जन सुंदरी कविता का इच्छा नहीं करते हैं। सो इंद्र तृप्ति मतलब ये सब चीज है, धनम जनम सुंदरी, इसको इंद्र तृप्ति कहते हैं। सो इसको इंद्र तृप्ति कहते हैं, ना धनम ना जनम ना सुंदर। इंद्र तृप्ति से, इंद्र तृप्ति मतलब धनम जनम सुंदरी और कविता। सो धन जन और सुंदरी ये सब की इच्छा नहीं होना चाहिए। कविताम क्यों? हालांकि हमारे आचार्यगण बहुत सारा प्रचार चाहते थे, सबको भक्ति प्रदान करना चाहते थे, लेकिन वो गुणात्मक गुण को भी उन्होंने वर्णन किया है। वो प्रभुपाद जी बार बार ये भी करते थे, ये भी उल्लेख करते थे ना वो श्लोक कि कई सारे तारों से अच्छा है एक चंद्रमा, वो चाणक्य पंडित का वो श्लोक भी उल्लेख करते थे ना। तो हमें इसको देखना है हमेशा, हमें बहुत प्रचार, बहुत सारा लोगों को अंदर लेके आने के लेके आने की इच्छा से हम लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, लेकिन उससे दूसरा जो है वो भी हमें देखना है, क्वालिटी 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 क्वालिटी। तो नहीं तो वो क्या हो जाता है, जन्म जन्म, हम लोग जन्म के पीछे पड़े हैं, है ना। सो ठीक है, सुंदरी और धन को तो वो उतना हम लोग इच्छा नहीं करते हैं, धन का भी बहुत होता है इच्छा। तो ये सब हमें देखना चाहिए किस हद तक हम लोग जा सकते हैं। कविता मतलब क्या है? कविता शब्द का क्या अर्थ होता है? वो तो जन्म हो गया। पोएम, पोएम का क्या अर्थ होता है इस श्लोक में? तो गुणगान भी है, मुझे गुणगान नहीं चाहिए, और मेंटल स्पेकुलेशन भी है, दोनों मनोधर्म में ऐसे भौतिक चिंतन में लग जाना है ना। कविताम न जगदीश कामय, तो मम जन्मनि क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु कित्वयि, जन्म जन्मांतर जन्म जन्मांतर। सो आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहते, यहाँ पर भुक्ति नहीं चाहते और मुक्ति नहीं चाहते, दोनों नहीं चाहिए। तो पहले लाइन में जो जो भी है वो भुक्ति से संबंध है, भौतिक भोग से संबंध है, और दूसरा लाइन में मुक्ति भी वो त्याग रहे। ये शुद्ध भक्ति के लिए क्या है, योग्यता है, भुक्ति और मुक्ति का इच्छा नहीं रहता है। शुद्ध भक्ति के लिए ये इच्छा है, ये योग्यता है। तो इसको वास्तविक सन्यासी या योगी कहते हैं। ठीक है, श्लोक क्रमांक दो। यम संन्यासम इति प्राहुर् योगम तम विद्धि पांडव न सन न ह्य संन्यास। यम संन्यासम इति प्राहुर् योगम तम विद्धि पांडव नाह्यस्यन्यास्तत संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव पुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसी ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता है। तो आजकल तथाकथित योग का अभ्यास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी ही वो उसको किसके लिए योग अभ्यास कर रहे लोग, ताकि और इंद्र तृप्ति को करे, अच्छी तरह से बढ़ाए। लेकिन योग का अर्थ होता है इंद्रिय तृप्ति से मुक्त होना चाहिए। जब तक इंद्रिय तृप्ति से नहीं मुक्त होते हैं सो तब तक योगी नहीं बन सकते हैं। और यम संन्यास इति प्राहु, संन्यास का ये ऐसा नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षते निराशिर निर्ममो भूत्वा, क्या बोलते हैं पिछले अध्याय में भगवान जो सन्यासी का परिभाषा दिया हूँ, तो निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो वो क्या करता है, अपने कर्म के फलों को भगवान को समर्पित करता है, उससे आसक्त नहीं रहता है, उसको सन्यासी कहते हैं। तो यम सन्यासी इति प्राहुर योगम थम विद्धि पांडव, उसी को योगी कहते हैं या योग कहते हैं। न ह्य असन्यास्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जब तक सन्यासी नहीं होता तब तक योगी नहीं बन सकते हैं। हम लोग अपने आप को भक्ति योगी मानते हैं, लेकिन वो किस हद तक, जिस हद तक हम लोग हमारे संपर्क में जो भी हमारे पास है उसको पूरी तरह से भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, तब तक हम लोग उसी हद तक हमें भक्ति योगी माना जाता है। या जिस हद तक हम लोग इंद्र तृप्ति से मुक्त है और अपने आप को भगवान की सेवा में लगे हैं तो उस हद तक हमें भक्ति योगी माना जाता है, योग। तो ये दोनों प्रोपोर्शन में चलते हैं, भौतिक इंद्र तृप्ति को त्यागना और सब कुछ भगवान को समर्पित करना और उसी को भक्ति योग, तो ये प्रोपोर्शन है। तो किस हद तक जा सकते हैं हम लोग कोई भी हद तक जा सकते हैं। जितना हो सके उतना इंद्र तृप्ति से अलग रहना चाहिए और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो उस हद तक हम भक्ति योगी माना जाते हैं, योगी माने जाते हैं। तो ये योग का सार है, इसी को योगी या योग कहते हैं। वास्तविक सन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदानुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर के तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति के सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्र तृप्ति को त्याग देता है अर्थात समस्त इंद्र तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपने इंद्रियां लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त न हो। फलतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। साइमल्टेनियसली ही सन्यासी एंड योगी। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के ये दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार के आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर विशेष करके ये जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति जो है वो सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। साइमल्टेनियसली वो सन्यासी योगी दोनों होते हैं, तो वो महत्वपूर्ण है। तो हमें भी, लेकिन कृष्ण भावनामृत में भी हमें भी तो इंद्र तृप्ति की जो भावना है वो त्याग देना चाहिए। सब कुछ जितना हो सके उतना भगवान को समर्पित करने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो वो सब अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णन तथा आत्मनिक्षेप का अन्यो षड्विधा शरणागति। उस सिद्धांत के आधार पर हमें चलना। तो अभी ये योग का सीढ़ी को भगवान वर्णन करेंगे। आरुक्षो मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम् चते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों को परित्यागी साधन कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो प्रकार के सीढ़ियों को वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। एक प्रकार का सीढ़ी हम लोगों ने उस दिन बनाया था ना, तो कर्मयोग अष्टांग ज्ञान योग अष्टांग योग और भक्ति योग हम लोगों ने उस दिन बनाया था। आप चाहे तो चित्र देख सकते हैं अभी। तो जो आरंभिक अवस्था है वो क्या है, उसको योग कर्म कारण मुच्यते योगारुरुक्ष। तो योगारुरुक्ष तो आरंभिक अवस्था को योगारुरुक्ष कहते हैं। उस दिन हम लोगों ने लिखा था ना उसको योगारुरुक्ष कहते हैं। और अंतिम अवस्था क्या है, भक्ति योग, उसको योगारूढ़ कहते हैं। हाँ, समझ में आ गया। तो ये एक सीढ़ी है। यहाँ पर दूसरा सीढ़ी का भी प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं, अष्टांग योग। क्योंकि आप अनुवाद देखेंगे अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। तो आरंभ में क्या होता है, वो जो बीच में जो तीसरा जो सीढ़ी था उसको हम लोगों ने अष्टांग योग या ध्यान योग बताया। उसमें भी उसको वो अकेले वो जो योग अष्टांग योग है, या आप दूसरा भी ऐसे चित्र बना सकते हैं, अष्टांग योग का भी सीढ़ी बना सकते हैं आप सेपरेटली। तो उसकी आरंभिक अवस्था को योगारूढ़ कहते हैं, योगारुरुक्ष कहते हैं, योगारुरुक्षु कहते हैं। और उसके अंतिम जो सीढ़ी है उसको भी उसको योगारूढ़ कहते हैं। समझ में आ गए। तो कितने वहाँ पर सीढ़ी बनाना चाहिए हमको बताइए, अष्टांग योग में कितने सीढ़ी होते हैं? आठ सीढ़ी होते हैं, है ना, एट फोल्ड अष्ट अंग, आठ अंगों का वो योग है, पद्धति है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। सो पिछले अध्याय के 28वें और 27वें श्लोक के तात्पर्य में 27 और 28 ये सभी आठ जो सीढ़ी है, स्टेप्स उसको उन्होंने भगवान ने बताया था। समझ में आ गया? बनाएंगे उसको अभी। दो प्रकार के योग सीढ़ी, योग के सीढ़ी, एक तो हम लोगों ने पहले बनाया था बुद्धि योग का, जब चर्चा किया हम लोगों ने, धारण ध्यान समान। मनोहर ने किए नहीं, फास्ट है। हो गया है ना? दो योग सीढ़ी के बारे में वर्णन करते हैं कि नहीं प्रभुपाद तात्पर्य में? परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना पढ़ो आप जोर से पढ़ो।
परमेश्वर से युक्त होने की विधि योग कहलाती है। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। विभिन्न चढ़ावों के अनुसार इस सीढ़ी के विभिन्न भाग भिन्न भिन्न नामों से जाने जाते हैं, किंतु कुल मिलाकर यह पूरी सीढ़ी योग कहलाती है और इस तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगा रुरुक्षु अवस्था।
कर्म योग को क्यों नहीं लिया गया यहाँ पर? उसको कर्म कारण मुच्छते उस शब्द से बताया गया है, उसको ही योगा रुरुक्षु कहते हैं, है ना? ठीक है, कर्म योग में हमें लिखना चाहिए। ठीक है।
और सीढ़ी के प्रारंभिक भाग को योगारुरुक्षु अवस्था और अंतिम भाग को योगारुरुक्षु कहा जाता है। जहाँ तक अष्टांग योग का संबंध है, विभिन्न यम नियमों तथा आसनों जो प्रायः शारीरिक मुद्राएं ही हैं, के द्वारा ध्यान में प्रविष्ट होने के लिए आरंभिक प्रयासों को सकाम कर्म माना जाता है।
तो अष्टांग योग में कर्म ही कारण बन जाता है, ऐसे बोलते हैं। अभी आप दूसरा सीढ़ी जो जिसका वर्णन कर रहे हैं, अष्टांग योग का जो सीढ़ी हम लोग लेंगे, तो वहां पर कर्म कैसे आता है? कर्म कैसे आता है? वो यम नियम के द्वारा, आसन, यम नियम आसन जो पालन करते हैं हम लोग, वो शारीरिक क्रियाएं हैं, इसलिए कर्म कहते हैं उसको। कर्म कारणम उच्यते, है ना, इस श्लोक में जैसे वर्णन। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ गया? सबको समझ में आया? अष्टांग योग में जो पहला जो योग का सीढ़ी के वर्णन करते हैं, उसमें तो क्लियर है कर्म ही कारण, कर्म योग है वो, तो कार्य करना ही है। अष्टांग योग में आरंभ में कर्म कैसे होता है? वो यम नियम आसन, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं होते हैं ना, वो आसन में ऊपर से नीचे होना, ये सब करना क्या है? कर्म का, कर्म है वो, कार्य है, इसलिए कर्म कारण अनुच्यते। योगारूढ़ तस्यैव शम कारण अनुच्यते। जो योग अष्टांग योग के परिपूर्ण अवस्था में जाते हैं, तो वहाँ पर समाधि, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा शांत बैठना होता है, इसलिए सो शम कारण अनुच्यते ऐसे बताया गया, ठीक है। और वो जो पहला जो सीढ़ी लेंगे, उसमें शम कारण कैसे होता है बताइए? ठीक है, संपूर्ण भौतिक कार्यकलाप, भक्ति में तो कोई भौतिक कार्य होते ही नहीं, है ना, इसलिए उसको शम कारण होना। समझ में आ गए? दो सीढ़ियों का वर्णन हो रहा है, उन दोनों सीढ़ियों का आरंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था का वर्णन हो रहा है इस श्लोक में। समझ में आ गए? तो हो गया खत्म, आप पढ़ लिया पूरा?
ऐसे कर्मों से पूर्ण मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, जिससे इंद्रियां वश में होती है। जब मनुष्य पूर्ण ध्यान में सिद्धहस्त हो जाता है, तो विचलित करने वाले समस्त मानसिक कार्य बंद हुए माने जाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्थित रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे बौद्धिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं।
तो अभी कभी कभी हम लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे कृष्ण का स्मरण ही नहीं हो रहा, जबकि समय में भी वो अलग अलग चीज आ रहे हैं, मन में आ रहा है करके हम लोग सोचते हैं, लेकिन फिर भी वो गलती नहीं है। हम सेवा के बारे में चिंतन करना गलती नहीं है मन में। हालांकि जब हम प्रभुपाद जी पे ये भी सिखाया है कि जो एक चीज जो कर रहे हैं उसके बारे में चिंतन करना अच्छा है। कभी कभी हमारे भक्त लोग ज़्यादा कुछ अन्य सेवा करते हुए कि कान में डाल देते हैं या कुछ सुनते रहते हैं, तब क्या हो जाता है, जप में भी बहुत सारा चीज़ आ जाते हैं उसके साथ साथ। इसको वो ब्रह्मानंद प्रभु को प्रभुपाद जी ने एक बार बताया कि डू वन थिंग एट अ टाइम, ऐसे बताया। तो ये इसके कारण क्या हो जाता है, जब आप जप करने के लिए बैठ जाते हैं, तब वो बहुत सारा चीज़ मन में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक ही चीज़ को अभ्यास करने का कोई अभ्यास ही नहीं किया, एक ही चीज़ करने का कोई अभ्यास ही नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग एक ही साथ में बहुत सारा चीज़ करना चाहते हैं, तो इसलिए कोई गलती नहीं है वो, तो वो भी भक्ति के संबंध है, लेकिन आइडियल नहीं है, है ना, इट्स नॉट आइडियल। तो और भक्ति में आरंभिक अवस्था से ही ध्यान से आरंभ हो जाता है, ठीक है।
यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो पिछले श्लोक में योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते, संपूर्ण भौतिक कार्यकलापों को त्याग करना ही कारण बनता है, तो उसको विस्तार से इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, योगारूढ़ अवस्था को और विस्तार से यहाँ पर भगवान कि जब कोई मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके न तो इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है न सकाम कर्म प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहलाते हैं। अगला श्लोक लेंगे, ठीक है। उदरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धोरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है।
तो यहाँ पर भगवान इस योगाभ्यास में मन को नियंत्रण करने का क्या महत्व है उसके बारे में भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो अपने मन की सहायता से अपने आप को उद्धार करना चाहिए, अपने आप को नीचे गिरने नहीं देना चाहिए। कि तो इसमें इस श्लोक में विशेषता क्या है बताइए, क्या विशेषता है इस श्लोक में बताइए। उदरेद आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर आत्मैव रिपुरात्मनः। क्या विशेषता है इस श्लोक में? बहुत बार आत्मा आत्मा शब्द आया है ना। कितनी बार आत्मा है आया है बताइए, मनोहर बताओ कितनी बार आया है? कितनी बार? सात ही बार ना, ज्यादा नहीं है ना, ठीक है। आठ बार आया, आठ या सात? आठ। तो आठ बार आत्मा शब्द आता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कहते हैं, आत्मा शब्द का अलग अलग अर्थ होते हैं। कभी आत्मा शरीर को संबोधित किया जाता है, कभी उसको मन को संबोधित किया जाता है, और कभी अपने जो स्वयं आत्मा है उसके बारे में जीवात्मा को संबोधित करता है। तो ऐसे उसका अलग अलग अर्थ होते हैं। तो मन को भी आत्मा कहा जाता है। तो अभी मन को, मन के सहायता से हमें क्या करना चाहिए? तो अपने आप को उद्धार करना चाहिए। तो क्यों मन को नियंत्रण करना चाहिए या मन को सहायता से अपने आप को उद्धार करना चाहिए? क्योंकि इंद्र तृप्ति का केंद्र क्या होता है? मन होता है। वो सभी इच्छाओं का गोडाउन, प्रभुपाद जी ने पहले दूसरे अध्याय में वर्णन किया है कि सभी मन इंद्रिय इच्छाओं का वो गोडाउन है। वो तो सभी इच्छाएं उसमें हैं। और हमने वो भी चर्चा किया था कि कैसे मन के इर्द गिर्द ये सभी इंद्रियां होते हैं। और भगवान ने ये भी कहा कि जिसके ऊपर ये मन ध्यान करता है वो इंद्रिया बुद्धि को हरण करके लेके जाता है। वायु नावा मिवाम बसा, जैसे वायु नाव को हरण करके लेके जाता है। तो इसके कारण मन को नियंत्रण करने के करने जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक इंद्रियों को निग्रह नहीं करेंगे। जब तक इंद्रियों को निग्रह नहीं करेंगे, सुनो सुनो हरिदास सुनो नित्यानंद जब तक हम लोग मन को नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक इंद्रियों को नियंत्रण कर पाना मुश्किल है। जब तक इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक इंद्र तृप्ति से मुक्त होना मुश्किल है। जब तक इंद्रिय तृप्ति से मुक्त नहीं होंगे तब तक सन्यासी योगी बनने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता, भक्त बनने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। तो वास्तव में सभी भक्तों को सन्यासी होना चाहिए, है ना? वास्तव में देखेंगे तो सभी भक्तों को सन्यासी होना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई योग अभ्यास में भी इंद्र तृप्ति के लिए छूट नहीं है। योग मतलब नहीं, इंद्र तृप्ति नहीं। तो ये मन को नियंत्रण करने का जरूरत है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वो श्लोक उल्लेख कर रहे हैं, मनैव अमृत बिंदु उपनिषद से, मनैव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षे बंध बंधाय विषया संगो मुक्त्या निर्विषयं मनः। तो मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण बनता है। वो जो मन विषय विषय के संग में है, विषय के पीछे पड़ा है, वो बंधन में डालता है। और जो मन विषय से मुक्त है, विषय से अलग हो गया है, विषय चीज़ों से, वो हमें मुक्ति प्रदान करता है। तो इसलिए मन को नियंत्रण करना ये बहुत ही ज़रूरत है। हम लोग मुक्त होना चाहते हैं तो मन को विषय सुख से दूर लेके जाना चाहिए उसको। तो अंत बाद में भगवान इसको ऑस्टेरिटी ऑफ द माइंड, मन का तपस्या के बारे में वर्णन करेंगे 17वें अध्याय में, कि इंद्र तृप्ति के विषयों से दूर रहना चाहिए, लेके जाना चाहिए मन को। ठीक है, तो ये मन के नियंत्रण करने का महत्व। और भगवान इस हद तक तो बता रहा है कि बंधु मन क्या है, बंधु रेवात्मैव रिपुरात्मनः। मन ही क्या है, बंधु भी है और शत्रु भी है। हमने इसको समझ लिया विस्तार से यहाँ पर, ये जो श्लोक अमृत बिंदु उपनिषद है ना, उससे हम लोगों ने समझ लिया कि कब ये बंधु बनता है, कब ये शत्रु बनता है। उसको भगवान अभी अर्जुन को बताएंगे। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं करता कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। अमृत बिंदु उपनिषद में क्या कहा गया, जो मन विषय संग में है वो हमारा बंधन का कारण बन जाता है, तो वो शत्रु है। और जो विषय से मुक्त है तो वो हमारा मुक्ति का कारण बन जाता है, इसलिए वो मित्र है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। जिस व्यक्ति ने इस मन को नियंत्रण किया है, जीत लिया है, वो उसके लिए मित्र है। और जिसने इसको नहीं जीता है, इसको नियंत्रण नहीं किया है, तो वो शत्रु, उस मन ही उसका शत्रु है। वर्तित आत्मा ही वह शत्रुवत। तो हम लोग क्या है, बद्ध अवस्था में हमारे शत्रु हमारे साथ ही रहते हैं, शत्रु के साथ ही हम लोग जी रहे हैं बद्ध अवस्था में। तो मुक्त अवस्था में क्या है, तो हमारे वो मित्र बन जाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर, अतः जब तक मन वो अविजित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम क्रोध लोभ मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। तो ये अगले श्लोक के श्लोक में ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो अगले श्लोक में वो जिस व्यक्ति ने मन को जीत लिया है उसके लक्षण बताएंगे। तो ये योगारूढ़ अवस्था के लक्षण भी है। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। तो जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मन मान अपमान एक से है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तो पिछले तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे थे इस श्लोक के बारे में थोड़ा उन्होंने बताया, किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाते मनुष्य इच्छा अनुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है, परमात्मा समाहिता है। इस श्लोक में परमात्मा समाहिता बता रहे ना, उसका अर्थ क्या है, परमात्मा के आदेश को पालन करते हैं। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वो भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। तो कृष्ण भावनामृत में एक ऊंचा स्तर को या योग का ऊंचा स्तर को बता रहा है कि कृष्ण भावनामृत में हम सब कुछ क्या है, जैसे भगवान ने बताया उस वैसे ही करते हैं उनके इच्छा अनुसार भगवदगीता में वगैरह। सो जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, वो प्रशांत होता है। शांति कब आता है, जब आप इंद्र तृप्ति की इच्छा से मुक्त हो देते हैं तब शांति आसा है। शांति आने के कारण हम लोग सुखी बन जाते हैं। अशांतस्य कुतः सुखम भगवान बोल रहे थे ना, तो जो अशांत रहता है बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से पीड़ित है तो वो तो अशांत रहता है ना। तो इसके कारण तो वो प्रशांत नहीं रह सकता। परमात्मा समाहिता, तो परमात्मा समाहिता परमात्मा को आज्ञा को पालन करना। तो अभी कई प्रकार के गुरु होते हैं, किसी को पता है कितने सारे गुरु होते हैं?
सात
प्रकार के गुरु होते हैं। बताओ कौन कौन से सात प्रकार के?
शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु, पद्मदर्शन।
क्या क्या है ये बताइए, ये चारों क्या क्या है, क्या क्या करते हैं वो?
स्टार्टिंग में हमको कृष्ण भावनामृत के बारे में बताते हो, पद प्रदर्शन स्टार्टिंग में बताते हो, बाद में उसमें उसमें आगे बढ़ने के लिए शिक्षा देते हैं, जैसे शिक्षा देते हैं जो हम सरना करते थे पूर्ण, और वो बता 16 नियम 16 माला चाहिए, परमात्मा।
ऐसे चार गुरु होते हैं है ना, वर्तन प्रदर्शक गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु। जरूरी नहीं कि सभी ये चारों एक ही स्तर पर हो सकते होते हैं, समझ में आ गया? जरूरी नहीं कि ये सभी चारों एक ही स्तर पर होना चाहिए। वर्तन प्रदर्शक गुरु जो पहले हमें कृष्ण भावनामृत को बारे में बताया हमको या लेकर आया हमको, उनको वर्तमान प्रदर्शक। दूसरा क्या है, शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु मतलब वैसे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु के बारे में चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है। दीक्षा गुरु हमारा संबंध जोड़ते हैं, संबंध ज्ञान प्रदान करते हैं, और शिक्षा गुरु क्या करते हैं, वो हमें अविधेय ज्ञान देते हैं कैसे भक्ति में प्रगति करना चाहिए ऐसे। तो और चौथा है चैत्य गुरु, जो हृदय में बैठे हैं वो भी हमें उपदेश देते हैं, लेकिन उसको हम लोग सुन नहीं पाते हैं। कौन उसको सुन सकते हैं बताइए, कौन चैत्य गुरु के आज्ञा या उपदेश को सुन सकते हैं? यहाँ पर जिसका वर्णन आ रहा है उस व्यक्ति सुन, जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, वही सुन सकते हो। तो जो पूरी तरह से मन और इंद्रियों को निग्रह कर लिया है, प्रभुपाद जी भागवत के एक तात्पर्य में लिखते हैं, जब एक महान आचार्य नहीं होते हैं सभी शिक्षा देने के लिए, किन से हमें सुनना चाहिए? जो व्यक्ति ने अपने इंद्रिया और मन के ऊपर काबू कर लिया है उस व्यक्ति हमें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। या श्रील प्रभुपाद जी भी एक हाल ही में वो बीवी के संगम में कोट आया था, जब तक एक व्यक्ति ये छह वेगों के ऊपर काबू नहीं करता है वो दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता, दे नहीं पाएगा वो। तो ये हमें समझना चाहिए, वो व्यक्ति क्या है, परमात्मा से सुन सकता है। वैसे तो हमें शिक्षा तो है बाहर, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए एक दृष्टिकोण से भी, क्योंकि यहाँ पर शिक्षाएं तो है, लेकिन शिक्षाओं को समझने के लिए भी ये सब योग्यता होनी चाहिए। तो जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथामान अपमानयो। तो ऐसे द्वंद्वों से वो कभी विचलित नहीं होता है, समभाव में रहता है। वो हम चर्चा कर रहे थे परमात्मा को कौन सुन सकते हैं, तो ऐसे मन के ऊपर काबू करना, इसलिए ऋषिकेश शब्द आया था ना, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। वहाँ पर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश कहते हैं उनको, वही परमात्मा है, परमात्मा रूप है। या दसवें अध्याय के दसवें श्लोक में तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां गोपयन्ति। भगवान बुद्धि योग देते हैं हृदय में उनको, क्या करते हैं तो हृदय में उनको प्रेरणा देते हैं। तेषां एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानदन्तम्। उस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं तेषां बुद्धि योगं तं। एक व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु भी है, एक आध्यात्मिक संस्था से भी जुड़े हैं, लेकिन उनका फायदा नहीं उठा रहे, लेकिन फिर भी अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं भगवान बुद्धि देते हैं। लेकिन वो लंबा समय लेगा वो, है कि नहीं, वो हमारे प्रामाणिकता के ऊपर भी निर्भर रहेगा, वो कितना हम प्रामाणिक है उसके ऊपर होगा, है ना। तो और हमारा जो प्रगति है वो कम हो जाए, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक गुरु का जो भगवान ने भेजा है उनको, उनका सहायता का हम लोग फायदा नहीं उठा रहे, इसके कारण हमारा प्रगति कम हो जाए। ठीक है, जितात्मनः प्रशांतस्। तो आगे ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इच्छुतरे योगी समलोष्ट्राश्म कांचन। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो उसके लक्षण और वर्णन किया जा रहा है यहाँ पर। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, तो ज्ञान और विज्ञान से वो संतुष्ट हो गया है, तृप्त हो गया। सो विज्ञान क्या है? परम सत्य के अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है, सिर्फ मानसिक मनोधर्म व्यर्थ है। इसलिए विज्ञान का अर्थ बोलते हैं रूपा जी, तो भक्ति अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवे प्रायम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुरत्यदा। सो इस श्लोक को इसलिए उल्लेख कर रहे हैं कि जो लोग भक्ति में लग जाते हैं तो उनको सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, वो विज्ञान प्राप्त हो जाता है, भगवान की कृपा से साक्षात्कार हो जाता है, उसको विज्ञान कहते हैं। सिर्फ ज्ञान होना, आप भगवद्गीता को पढ़ के या कोई शास्त्र पढ़ के भी ज्ञान हो सकता है, लेकिन उसका साक्षात्कार होना चाहिए ना, है कि नहीं, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है उसको, भक्ति के मार्ग को पालन करने से। कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के नाम रूप गुण तथा
उनकी लीला उनके की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम रूप गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है।
तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद हमने इसको पढ़ा था कि कैसे भगवद गीता समझना चाहिए। भगवद गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। ये कृष्ण भावनामृत का विज्ञान भगवद गीता में वर्णन हुआ है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता है या भगवद गीता नहीं समझ सकता है। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें भगवद गीता या कृष्ण भावनामृत को एक भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनसे ही समझना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रहता रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभास द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं वाई रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विज्ञान इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, प्रभुपाद जी भी अलग अलग जगह पर ऐसे वो कुछ उपदेश देते हैं, ऐसा लगता है कि वो विरोधाभास लगता है ना, लेकिन हमें साक्षात्कार है तो वो विरोधाभास नहीं होता है। हम जब ये सरल जीवन और उच्च विचार को प्रचार कर रहे थे, एक वक्त ने हमें हम बता रहे थे फार्म कम्युनिटी में अच्छा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होना चाहिए, तो एक वक्त बहुत सारे प्रभुपाद जी के कोट लेकर आए कि इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, यू नो यूज़ कर सकते हैं ऐसे, प्रभु जी अलग अलग बहुत उन्होंने लेकर आए। तो मैंने उनको पूछा सरल जीवन का क्या अर्थ है बताए पहले आप, और किस हद तक जा सकते हैं, हम किसी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, है कि नहीं। और क्यों हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहते, क्योंकि उसके साथ साथ ये बहुत सारे साधन आ जाते हैं, और यू नो इसके कारण रात को लोग क्रियाशील हो जाते हैं, लेट सोएंगे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, और कृष्ण भक्ति सुबह उनका साधना बिगड़ जाता है ना। क्यों गृहस्थ भक्त, भारत में उतना भी है, बड़े बड़े शहरों में है, जीवन बहुत क्या है, जीवन बहुत फास्ट है, बहुत लंबा समय तक काम करते हैं वो, लेकिन फिर भी सभी लोग उठ सकते हैं सुबह। उतना भी ये नहीं है कि जब तक आप अलग अलग शिफ्ट में काम कर रहे हैं, दिन में जो काम करते हैं उनके सभी उठ सकते हैं, सिर्फ ये इलेक्ट्रिसिटी है, लोग सब लोग सो लेट सो रहे हैं और लेट उठते हैं, बस वही समस्या है ना। यहाँ पर इसलिए बोल रहे साक्षात्कार होना चाहिए, साक्षात्कार नहीं है तो बाह्य विरोधाभासों से द्वारा मोहित या भ्रमित होता रहता है। हमें ऐसे प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को अच्छी तरह से साक्षात्कार से हमें सब कुछ समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारा कोट उल्लेख इधर उधर से आप बहुत सारा कोट उठकर, कभी कभी ऐसा भी बोलते है ना प्रभुपाद जी किसी को बैडमिंटन से, आप बैडमिंटन खेल के आप कृष्ण का सेवा करो, ऐसे किसी को बोल दिया, कोई उसको उल्लेख नहीं कर सकते है ना। ऐसे उल्लेख कर सकते, लेकिन वो व्यक्ति बैडमिंटन खेलता है उसको कुछ ना कुछ ऐसे प्रभुपाद जी ने शिक्षा दिया है ना, किसी न किसी तरह उसको कृष्ण से जोड़ना चाहते थे, लेकिन वो हम बैडमिंटन खेलना शुरू कर देंगे। तो साक्षात्कार होना चाहिए है ना। तो ये सब क्या है, वो भक्ति से कुछ सीधा अंग तो नहीं है, 64 अंगों में तो नहीं आता है ना भक्ति के, है ना। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है। ऐसे साक्षात्कारी और अनुभवी व्यक्ति क्या है, वो विजितात्मा विजितेंद्रिय होता है, क्योंकि वह कृष्ण के शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उससे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वत्ता और मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण है के समान उत्तम होता है, कंकड़ों तथा पत्थरों से अधिक नहीं होता। यहाँ पर प्रभुपाद जी मंडेन स्कॉलरशिप उसको खंडन कर रहे हैं। लोग बहुत बड़ा बड़ा डिग्री चाहते हैं या शास्त्र को भी वो क्या है एक एकेडमिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहते हैं, वो लोग कुछ पालन नहीं करना चाहते, कुछ विज्ञान नहीं रहता उनके जीवन में, उसको अपना नहीं चाहते, उसको साक्षात्कार नहीं करना चाहते, सिर्फ बाह्य रूप से उसको पढ़ना चाहते हैं। समझ में आएगा? ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय में होता है ना, भारत की सभ्यता का डिपार्टमेंट होता है, इंडियन रिलीजन हिंदू रिलीजन डिपार्टमेंट होता है, या ऐसे संस्कृत डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग जगह पर वो लोग ये सब अध्ययन करते हैं, भगवद्गीता गीता वगैरह सब कुछ अध्ययन करते हैं, लेकिन कोई साक्षात्कार नहीं रहता, विज्ञान नहीं रहता उनके अंदर। तो लेकिन ऐसे व्यक्ति जो विज्ञान है और जितेंद्रिय है वो दिव्य है, उसके लिए सब ये ऐसे बड़ा बड़ा डिग्री और ये बाह्य शास्त्रों के अध्ययन वो सिर्फ कंकड़ के समान है, पत्थर और कंकड़ के समान। और सब कुछ इस भौतिक जगत के जो संपत्ति भी उस व्यक्ति को कंकड़ के समान, आप जानते हैं ना, वो सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति ने आया, उन्होंने सुना था कि सनातन गोस्वामी के पास एक चिंतामणि है। चिंतामणि पहले जमाने में हुआ करते थे, आजकल सब लुप्त हो गए। आप किसी को उसको छूते हैं तो वो सोना बन जाता है, बहुत अच्छा चीज़ है ना, है ना, तो सोना बन जाता है वो, है करके उस व्यक्ति को पता चल गया। उन्होंने सोचा ये तो बाबा जी है, उसको तो वो लोग क्या नहीं करेंगे, उसका उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए मैं जाके तो उनसे मांग लूँगा। तो जब वो सनातन गोस्वामी के पास आए, उन्होंने उनको मांगा उसको, फिर सनातन गोस्वामी ने बताया कि वहाँ पर कूड़ादान में कहीं पड़ा होगा, ढूंढ लो तुम, ऐसे बोल दिया। तो कूड़ादान में ढूंढ के उसको लेकर गए हो, और वो व्यक्ति सब कुछ सोना बना दे, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर सोचने लगा हो, क्योंकि भौतिक संपत्ति तो संतुष्टि नहीं लाती है, है ना। जीवात्मा सिर्फ भगवान कृष्ण को ही सेवा करके, प्रेम करके, सेवा करके ही संतुष्ट हो सकता है, और कभी किसी चीज़ में संतुष्ट नहीं होगा जीवात्मा को। ययात्मा सुप्रसिद्धति, तो सिर्फ भगवान की जो अहितु की भक्ति है वो आत्मा को संतुष्ट करता है। तो उसने सोचा कि इनके पास और भी कुछ होगा, इन्होंने ये कूड़ादान में, वो थोड़ा बुद्धि लगाया उसने, इन्होंने कूड़ादान में फेंक दिया था, इससे लगता है कि इनके पास इससे भी और अच्छा चीज़ है, उसको मैं प्राप्त करूँ, ऐसे वो उनके पास चले गए। फिर सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ मेरे पास और भी उससे भी श्रेष्ठ चीज़ है, फिर आप मुझे वो दे दीजिए, आप क्या करेंगे, आप तो बाबा जी है, वैरागी है, विरक्त है। तो तब सनातन गोस्वामी ने कहा पहले वो जो है ना उसको वो पानी में फेंक कर आ जाओ, यमुना में फेंक कर आ जाओ, तब मैं आपको दे दूंगा। तो वो गहरा हृदय से, भारी हृदय से, हाँ क्या मुझे इससे भी श्रेष्ठ चीज़ मिलेगा या इसी से मैं संतुष्ट रहूं, ऐसे भारी हृदय से उसको फेंक कर आ गया। फिर उसको हरिनाम दे दिया, जपा करो ऐसे बैठ के यहाँ पर। तो इसलिए जो व्यक्ति जितेंद्रिय है, तृप्तात्मा है, विज्ञान है, आत्म साक्षात्कार हो गया है उनको, भगवान का साक्षात्कार हुआ है, वैसे व्यक्ति के लिए ये क्या है, सब सोना वगैरह सब कंकड़ एक ही समान है, बस उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो अगला श्लोक हाँ हमने उदाहरण दिया ना, क्या बताया मैंने, उदाहरण दिया मैंने वो, और कुछ बताया याद आ गया तो बोलते हैं। तो अगला श्लोक कितना, दसवा नवा ना। तो इस श्लोक से ये श्लोक भी इसमें आता है। सूरन मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुस्वपी च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों प्रिय मित्रों तटस्थों मध्यस्थों ईर्ष्यालुओं शत्रुओं तथा मित्रों पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भावना से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो ये सभी सर्वोच्च स्थिति है, योगारूढ़ स्थिति है ये, ठीक है। यहाँ पर योगारूढ़ योगारूढ़ का वर्णन हुआ। तो अगला श्लोक से अभी भगवान अष्टांग योग को वर्णन करेंगे। योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः। योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भावना की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो अष्टांग योग के लिए क्या क्या जरूरतें हैं वो उसका भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या जरूरत है, पहला चीज़ क्या है, वो सदैव शरीर मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाना चाहिए और एकांत स्थान में रहना चाहिए। भक्तों के लिए या जो हम लोग भक्ति योग में लगे हैं, एकांत स्थान मतलब क्या है, अन्य भक्तों का संग में रहना चाहिए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के संग में रहना चाहिए विशेष करके, हाँ ठीक है। तो वही एकांत स्थान है उनके लिए। बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे, उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। तो बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में करना चाहिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मन को वश में करना और समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भावना की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। वो इच्छाएं नहीं होना चाहिए, बहुत सारा चीज़ को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो ये सब योग के लिए जरूरतें हैं। प्रभुपाद यहाँ पर बहुत सारा चीज इसको उल्लेख वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना। तो प्रभुपाद जी क्योंकि आरंभ पहले जो श्लोक है उसमें ही बोल दिया उन्होंने, अष्टांग योग अभी जरूरत नहीं है। पहले श्लोक के तात्पर्य में यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन आया, लेकिन ये इस युग के लिए नहीं है, जरूरत नहीं है। तो वो ये सभी चीज़ों को जिसके अष्टांग योग का वर्णन हुआ यहाँ पर कृष्ण भावनामृत के रूप में वर्णन करेंगे। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित है, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेष वाली तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है,
क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप में कृष्ण भावना भावित होते हैं। क्योंकि इस श्लोक में परमात्मा समाहिता हुआ ना बताया गया ना, परमात्मा में लगाना चाहिए। योगी लोग क्या है, वो परमात्मा में लगाते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। वो परमात्मा साक्षात्कार क्या है, वो परिपूर्ण नहीं है, लेकिन भगवान साक्षात्कार परिपूर्ण है। इतने पर भी इन सबों के अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। तो स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यम न जातुचित, सर्वे विधि निषेधशु रेतयोर एव किंकरः। ये पद्म पुराण से श्लोक है, इसको भक्ति का सार माना गया है। सभी भक्ति अंग इसको सहायता करना चाहिए, स्मर्तव्य ये सार है। क्योंकि इस श्लोक में योगी इंद्रियत सततम आत्मानम रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा, एकाकी यत चित्तात्मा का ऐसे बताया गया। हमारा चित्त हमेशा भगवान कृष्ण में लगना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांत वास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगियों के चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में से उसे बसा ले। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती है जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो। क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना भावित का अर्थ है आत्मो क्या होता है या योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग दे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव ना पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थों की वस्तुओं को के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव से भाव में उसे फंसा ले, मतलब आकांक्षाओं को और सामग्रियों को त्याग देना चाहिए, इकट्ठा करना। तो यहाँ पर कृष्ण भावनामृत भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावनामृत का अर्थ है आत्मो संसर्ग, जिसमें संग्रह भाव के लिए लेश मात्र स्थान नहीं होता। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार देते हैं। तो कितना संग्रह करना चाहिए, भक्तों को कितना संग्रह करना चाहिए, यहाँ पर वर्णन। वैसे रूप गोस्वामी उपदेशामृत में निराशिर परिग्रह, रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं कि हमें अत्याहार नहीं करना चाहिए, ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए, है ना। आजकल मार्केट में बहुत सारा चीज़ बनाए जाते हैं, बहुत बनाते जाते है ना। तो सभी ऐसे चीज़ों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आजकल ऐसे बड़े बड़े फ़ोन आते हैं, है ना, क्या बोलते हैं उनको, स्मार्टफोन बोलते हैं ना, हाँ, बहुत सारे ऐसे कुछ चीज़ है ना, सुनने का भी बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं। हाँ, उनके भक्ति में उसका लाभ उपयोग होता है, लेकिन ऐसे हम बहुत सरल सा सरल चीज़ लेना चाहिए उसमें, हाँ, ऐसे चमक दमक वाला चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, तो वो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। तो अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते प्रापंचकतया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु न मुमुक्षु भी परित्याग वैराग्यम फलगु कथ्यते। तो यहाँ पर अनासक्तस्य, उससे आसक्त नहीं होना चाहिए। जब आपको बोला जाता है आपको उसको त्याग दीजिए, तो त्याग देना चाहिए।
वो अनासक्ति का लक्षण है। अनासक्तस्य विषयान् यथारम उपयुञ्जता, यथारम उपयुञ्जता, जिस हद तक हमारे अंदर योग्यता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं, महान आचार्य होते हैं, वो माया को उसको चबा के उसको क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या हमें वो डाइजेस्ट करने का शक्ति है ना? है ना? तो इसलिए जिस हद तक हमारे अंदर वो शक्ति है उपयोग करने के लिए, उस हद तक ही हमें उसको करना चाहिए। या दूसरे यथारम्भ मतलब जितना हमें जरूरत है भक्ति के लिए, उतना ही हमें उसको करना चाहिए। यथारम उपयुञ्जता, निर्बंधे कृष्ण संबंधे, कितना निर्बंध है, कोई बंधन नहीं है कि क्या ये भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। लेकिन पहले लाइन में वो सीमा डाल दिया पहले, बाद में निर्बंध है कृष्ण संबंध, क्योंकि सब कुछ कृष्ण के संबंधित है वो, है ना। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्याग वैराग्य फलु कथ्यते। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में व्यक्ति है वो परिपूर्ण है, और आगे इस अष्टांग योग के जरूरतों को कहते हैं। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नात्युष्यतम नातिनीचम चैलादीन कुशोत्तरम तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः शुद्ध। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और बहुत और फिर उसे मृगचाला से ढके और ऊपर मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों के वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। तो ये श्लोक है और अगला श्लोक है। तो ये दसवें श्लोक से पंद्रहवें श्लोक तक भगवान इस अष्टांग योग के लिए क्या क्या जरूरी है उसका वर्णन कर रहे हैं। आप उसका याद ही बना दीजिए, हाँ, एक एक करके लिस्ट बना दीजिए उसको, हाँ, बाद में सब कर रहे हैं ना, कुछ हमने जो बताया है करके उसका कर रहे कि नहीं होमवर्क, उसका याद ही बना दीजिए, हाँ ठीक है, हाँ लिस्ट लिस्ट लिस्ट। प्रभु जी हिंदी आप हमें सिखाना चाहिए, याद ही भी लिस्ट। सूची का मतलब क्या है? इट इज कंटेंट्स आर समथिंग। स्कर्क में यादी यादी स्कर्क में
यादी वर्क में यादी
या शुचो देशे, वो क्या करना चाहिए, पवित्र स्थान या तीर्थ स्थान का सूचक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बताए, भारत में योगी तथा भक्त अपना घर त्याग कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश तथा हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों में वास करते हैं और एकांत स्थान में योगाभ्यास करते हैं, जहाँ यमुना तथा गंगा जैसी नदियाँ प्रभावित होती है। और आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन की कृपा से ये जो स्थान है अभी कुछ शुचि स्थान नहीं रहे हैं अभी, है ना। ये किसका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज का, हमारा तकनीकी का, ऑटोमोबाइल एडवांसमेंट का, है ना। तो सब जो लोग पतित लोग है वहाँ पर जाके सब बर्बाद कर दिया सब कुछ। हम हाल ही में ऋषिकेश गए थे ना, वहाँ पर तो सफ़ेद बंदर बंदरियाँ भी आते हैं और सब बंदर बंदरियों के कार्य में लगे रहते हैं, है ना। तो अभी कुछ नहीं रह गया वहाँ पर, है ना। तो आजकल तो हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि वृंदावन भी नहीं जाए तो ऐसा हमें आना महसूस हो रहा है। तो क्योंकि वहाँ पर सब ऐसे लोग आ गया, वो सब लोग हमारे आंदोलन के भी भक्त हैं, वृंदावन में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इमारत बांध दिया वहाँ पर, बिजनेस के दृष्टि से वो आए वहाँ पर, ये सब का क्या जरूरत है वहाँ पर वृंदावन में, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं हमारा पचरा प्रचार कितना गहराई के गहराई में जा रहा है। तो ऑल आवर प्रीचिंग इज ऑन सरफेस लेवल, हमारा प्रचार क्या है, बाह्य स्तर पर होगा, है ना। क्या आप कृष्णा बुक में या भागवत में आप पढ़िए वृंदावन के बारे में कैसा होता है, या उन चित्रों को देखिए जब प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, या प्रभुपाद जी के कुछ ऐसे प्रवचन सुनिए वहाँ पर कैसे जो अलग अलग पक्षियों का आवाज़ आता है पीछे, जो पीकॉक्स एंड पिजन्स क्या बोलते हैं, पीकॉक्स मोरों का भी आवाज़ सुनाई देता है, ऐसे वृंदावन अभी नहीं रहेगा, अभी तो पूरा गाड़ियों का आवाज़ सुनाई देता है वहाँ पर वृंदावन में दिन रात, है ना। ठीक है, आध्यात्मिक धाम है, धाम कभी भी ऐसे भौतिक चीज़ों से वास्तविक धाम प्रभावित नहीं होता है, लेकिन फिर भी कलयुग में ये कलयुग का जो प्रभाव है धाम के ऊपर भी होता है। तो कृष्ण भक्ति का वहाँ पर आपको ऐसे, या कृष्ण चेतना को ऐसे कुछ लक्षण नहीं दिखाई देते वहाँ पर, है ना। तो योगी को भी ऐसे शुचो देश जाना चाहिए। तो आजकल कभी ऐसे होता है क्या, जो योगी लोग हैं तथाकथित योग संस्थाएं हैं सिटी में, वो लोग योग संस्थाएं क्या कर रहे हैं योग संस्थाएं सिटी में क्या कर रहे हैं, कई सारे ऐसे योग संस्थाएं हैं ना सिटी में, वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। योगी को तो ऐसे निर्जन स्थान में जाना चाहिए ना, है ना। किंतु प्राय ऐसे करना सुगम के लिए विशेषतया पाश्चात्यों के लिए संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों के तथाकथित योग समितियां भले ही धन कमा लेते ले, किंतु वे योग के वास्तविक अभ्यास के लिए सर्वथा अनुपयुक्त होती है। जिसका मन विचलित और है और जो आत्मसंयमी नहीं है वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। अतः बृहद नारदीय पुराण में कहा गया है, कलयुग में, वर्तमान युग में, जबकि लोग अल्पजीवी आत्म साक्षात्कार में मंद तथा चिंताओं से व्यग्र रहते हैं, भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ माध्यम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम खलो नास्तव 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 गतिरण्यता। कला और दम्भ के इस युग में मोक्ष का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना है। कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, ऐसे कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये सब जो भगवान बता रहे हैं वो अभी लागू नहीं होता है, ऐसे बता रहे हैं दूसरे शब्द में। तो इसको बार बार दोहराएंगे प्रभुपाद जी। तो ये सब तात्पर्य को पढ़ के कुछ ऐसे शास्त्रज्ञ जो जिनको साक्षात्कार नहीं है, वो लोग ज्ञान विज्ञान तत्वात्मा नहीं है, वो लोग क्या किया, प्रभुपाद जी को कंडम करते हैं, भगवान कुछ बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी इसके विरुद्ध बोल रहे हैं, और फिर भी अपना जो भगवद्गीता है वो यथारूप मानते हैं, ऐसे कहते हैं। लेकिन ये मूर्खों को ये समझ नहीं समझ में, इसी अध्याय के अंत में भी अर्जुन उसको नकार देते हैं, ये अष्टांग योग को नकार देते हैं। हाँ, इतना मूर्ख है ना, निकम्मे है ना। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? इसलिए इस तात्पर्य में हरे नाम बताया ना, आप कहाँ से लेके आएंगे, उसका क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ, क्या योगाभ्यास करना चाहते हैं, क्या अष्टांग योग करना चाहते हैं? हाँ,
लेकिन जो योगी करता है
तो इसलिए वो लोग नहीं है, इसलिए योग नहीं कर पाते, इसलिए के लिए नहीं है। पहले जमाने में क्या होता था, जब आप जानते हैं ना, वो पुराणों से वो कथा बताया चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, कि वो एक उर्गारी था, फिर नारद मुनि आए, तो नारद मुनि आए तो सभी जो मृग है वो भाग के चले गए, मृगारी बहुत क्रोधित हो गए, क्यों आप यहाँ पर आए, आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं दे देता हूँ आपको, मृग चाहिए तो क्या चाहिए वो दे देता हूँ मैं, क्यों आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने बताया। तो ऐसे शिकारी लोग सेवा करते थे साधुओं का, तो ऐसे मिल जाता था वो। ठीक है, और क्षत्रिय भी वैसे यही करते थे ना, शिकार में जाते थे ना, वो लोग ऐसे साधुओं को दे देते थे ऋषि मुनियों को। और जो मर जाते हैं अपने आप, उसको भी ले सकते हैं, और
एक समय में एक ही सेवा करना चाहिए,
सुनना गलती नहीं है तो सुन सकते हैं, लेकिन हमें सुन सकते हैं, ऐसा सुना था हमने भी, प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा करके एक समय में, एक ऐसे ब्रह्मानंद प्रभु को उन्होंने बताया करके, इन दोनों ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऐसे भी होना नहीं चाहिए कि कभी ऐसे भावना भी, आप किचन में हैं, वो कुकिंग कर रहे हैं या ऐसे कुछ सेवा कर रहे हैं, सुनना बहुत महत्वपूर्ण वो तो है, श्रवण करना बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन सेवा को भी हमें महत्व देना चाहिए। अभी श्रवण कीर्तन किया हम लोग, उसका हमारा श्रवण कीर्तन का प्रोग्राम हो गया, फिर सेवा के ऊपर ध्यान देना चाहिए हम लोग, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि सेवा क्या है वो तुच्छ है, वो नहीं है, ऐसे ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे भावना नहीं आनी चाहिए, भावना बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, कि ये भगवान कृष्ण का सेवा है, इसलिए कभी कभी लोग क्या करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, सेवा नहीं करना चाहते लोग, मैं सिर्फ पढ़ता रहता हूँ ऐसे बोलो शुभ कहते हैं, तो उसको भी हमें करना चाहिए, वो भी जरूरत है आंदोलन के लिए, वो भी कृष्ण भक्ति है, वो भी भक्ति के अंगों में आता है, उसको भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम श्रवण कीर्तन को ध्यान देते। ठीक है, मन बुद्धि अहंकार के कारण शुद्ध आत्मा, हाँ तो क्या समझ में नहीं आया, नहीं, मूलतः आत्मा जो शुद्ध है उसका अर्थ ऐसा होता है, मूलतः जो आत्मा शुद्ध है अभी अहंकार के प्रभाव में है, तो उसका ऐसे बार बार आया था, पिछले अध्याय में भी ऐसे आया था, अनुवाद करते समय थोड़ा जागरूकता से अनुवाद करेंगे तो ऐसे संशय नहीं है। और कुछ
हर चीज को भगवान से संबंधित,
या
परमात्मा साक्षात्कार है, भगवत साक्षात्कार,
ये तो भक्ति में तो भगवान साक्षात्कार ना,
सेवा में
सेवा
हर चीज को सेवा में तो नहीं लगा पा रहे।
हर चीज क्यों सेवा में नहीं लगा पा रहे?
बहुत सारी चीजें
नहीं बताइए क्या है वो, क्या नहीं लगा पा रहे आप बताइए उदाहरण तौर पर। या हम लोग उसको शास्त्र के दृष्टि से देख सकते हैं कि लोग देखो कैसे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे ना, सब जगह एडवर्टाइज किया जाता है, ये खरीदो आप सुखी हो जाएंगे। तो सिर्फ एक क्या है, कल्पना है, ऐसे कुछ शास्त्र चक्षु कहते हैं, ऐसे शास्त्र के दृष्टिकोण से देखने से वो सर्वोच्च अवस्था है। वो यहाँ पर आएगा पूर्ण योगी के लक्षण। जब पूर्ण योगी होता है वो सब जगह भगवान को देखता, सब जगह परमात्मा को देखता, ठीक है, पूर्णता का लक्षण है। उस समय तक हमें सभी शास्त्र के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।